स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 26 मई दिन शुक्रवार। मैं हूं संदीप सोनी। मोदी सरकार ने आज पूरे किए 3 साल। क्या बदला इन 3 सालों में?
मनमोहन सिंह के जमाने में हर महीने कोई ना कोई स्कैम होती रहती थी, मोदी जी के जमाने में स्कैम कम है, या तो ये भी कहे कि अभी तक हमने ऐसे कुछ स्कैम नहीं देखे।
पंजाब में चरमपंथ का सफाया करने वाले पूर्व IPS अधिकारी KPS गिल का निधन। और विवेचना में आज कहानी 1959 के एक ऐसे हत्याकांड की जिसने भारत को हिला कर रख दिया था।
ये एक सिंपल मर्डर केस इतनी ऊंची पैरी तक कैसे पहुंच गया, जहां तक प्राइम मिनिस्टर नेहरू को प्रेस को जवाब देने पड़ा कि क्यों ये बात इतनी बढ़ गई है और क्यों पंडित नेहरू को बीच में पड़ने पड़ा।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार वात्सल्य राय से। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए। केंद्र सरकार के मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी में एक रैली में 3 साल के दौरान सहयोग के लिए आम लोगों को शुक्रिया कहा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब होगी। अमित शाह ने कहा,
ये 3-4 सालों में देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इस देश की राजनीति से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण, ये तीनों नासूरों को उखाड़ कर फेंकने का काम ये 3 सालों में हुआ है।
ये थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। वहीं केंद्र सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने सरकार की नाकामियां गिनाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सरकार वादे पूरे करने में नाकाम रही है। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी सरकार की उपलब्धियों पर सवाल उठाए। मिस्र में नकाबपोश हमलावरों ने कॉप्ट ईसाइयों को ले जा रही एक बस पर हमला किया। मिस्र के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक काहिरा के दक्षिण में हुए इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में बच्चों की भी बड़ी संख्या है। बस कॉप्टिक ईसाइयों को एक धर्म स्थल पर लेकर जा रही थी। हाल के महीनों में मिस्र में कॉप्टिक ईसाइयों पर यह तीसरा बड़ा हमला है। अप्रैल में 2 चर्चों में हुए धमाके में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन ने कहा है कि चरमपंथ का खतरा कम करने के लिए ब्रिटेन की विदेश नीति को कम हस्तक्षेप करने वाला होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चरमपंथ के खिलाफ कथित संघर्ष काम नहीं कर रहा है। उन्होंने ऐसी नीति की वकालत की जो विदेशी जमीन पर सैन्य हस्तक्षेप और घरेलू जमीन पर चरमपंथ के बीच सामंजस्य बैठाती हो। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में सोमवार को हुए हमले के बाद थम गया चुनाव प्रचार, दोबारा शुरू हो गया है। चुनाव अगले महीने होने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चरमपंथ के खिलाफ संघर्ष में ब्रिटेन को समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है। G7 देशों की सिसली में आयोजित बैठक के पहले मैक्रों ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेजा मे से बातचीत की। मैक्रों ने कहा कि चरमपंथ के खतरे से मुकाबले के लिए यूरोप को एक साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा, चरमपंथ के खिलाफ यूरोप के स्तर पर साझेदारी बढ़ाने के लिए हम हमेशा मौजूद हैं और हर संभव कोशिश करेंगे। द्विपक्षीय साझेदारी के लिए हम तैयार हैं। हम पूरे दिन इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये एक साझा चुनौती है। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक भारतीय वायुसेना के मंगलवार को लापता हुए Sukhoi-30 लड़ाकू विमान का मलबा तेजपुर से 60 किलोमीटर दूर मिला है। इस विमान ने तेजपुर सलोनबारी स्टेशन से उड़ान भरी थी। विमान में चालक दल के 2 सदस्य सवार थे और ये नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर थे। पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक KPS गिल का निधन हो गया है। वो 82 साल के थे। पंजाब में चरमपंथ खत्म करने में गिल की भूमिका को बड़ा श्रेय दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिल के निधन पर शोक जाहिर करते हुए कहा है कि पुलिस और सुरक्षा के क्षेत्र में देश के लिए की गई उनकी सेवाएं याद की जाएंगी। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव संदीप सोनी के साथ। ২৬ মে ২০১৪, तीन साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आज सरकार ने अपने तीन साल पूरे कर लिए हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इस मौके पर दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन किया और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जिन्हें विपक्ष ने खारिज कर दिया। बहरहाल, इन तीन साल में मोदी सरकार ने क्या किया, इसका जायजा ले रहे हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
इस रिपोर्ट पर काम करने के दौरान कुछ विश्लेषकों, लेखकों ने या तो बात करने से मना कर दिया या फिर कहा कि उनके पास तीन सालों में सकारात्मक बताने के लिए कुछ है ही नहीं। एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक इस सरकार ने पूर्व कांग्रेस कार्यक्रमों को मात्र आगे बढ़ाया या फिर उस पर ज्यादा जोर देकर काम किया। लेकिन दूसरा पक्ष ये कि योजना के बेहतर कार्यान्वयन पर पीठ थपथपाना क्या गलत है? सरकार के समर्थकों के अनुसार उत्तर पूर्व, आधारभूत सुविधाएं, विदेश मंत्रालय, इन सब में सरकार के काम को नकारा नहीं जा सकता। साथ ही मोदी सरकार के तीन सालों में प्रदर्शन अगर शून्य था तो आप इसे कैसे समझाएंगे कि मोदी अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं और भाजपा मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीत रही है? इस पर तर्क मिलता है कि चुनाव जीतना सरकार के प्रदर्शन का सबूत नहीं है, यानी तर्क के बाद तर्क और उस पर एक और तर्क। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कार्यालय में मजबूती लाने का श्रेय दिया जाता है। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल के दौरान आरोप लगे कि असली सत्ता सोनिया और राहुल गांधी के पास थी। राजनीतिक विश्लेषक मोहन गुरुस्वामी,
एक चीज है, उन्होंने पीएमओ में एक डिसाइसिवनेस लाया है, ऐसा मालूम होता है कि महसूस होता है कि कोई हुकूमत सीरियसली कर रहा है उधर और सोच रहा है और क्या करना है। पहले पिछले 8-10 साल में ऐसा मालूम होता था कि वहां में कोई आदमी नहीं है, ऑटो पायलट पे चल रहा है गाड़ी, तो अब एक कंट्रोल पे एक आदमी आया है, वो उसका होना महसूस हो रहा है लोगों को।
उन दिनों को ना भूलें जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिलने वॉशिंगटन डीसी रवाना हो चुके मनमोहन सिंह की अनुपस्थिति में राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। आज प्रधानमंत्री का दफ्तर बेहद मजबूत दिखता है। कुछ समीक्षकों के मुताबिक इस सरकार में फैसले तेज हुए, इसका उदाहरण सड़कों के बनने के लिए जमीन अधिग्रहण में तेजी आदि फैसले दिखते हैं। गुरुस्वामी के अनुसार मंत्री डरे हुए हैं, मंत्री स्तर पर तेज काम हो रहा है, दिख भी रहा है कि रोड निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, रेल के काम में तेजी आई है। मनमोहन सरकार के पहले 5 सालों की जहां तारीफ हुई, माना जाता है कि दूसरे सत्र में इसकी दिशा गड़बड़ाई। 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, चॉपर स्कैम, तत्रा ट्रक स्कैम, आदर्श स्कैम ने हेडलाइनें बटोरी। एक फिजा बनी कि सत्ता के गलियारों में दलालों का राज है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। प्रेक्षकों के अनुसार मोदी सरकार के तीन सालों में ऐसी बात केंद्रीय मंत्रियों के बारे में सुनने को नहीं मिली और इसके लिए सरकार की तारीफ होनी चाहिए। मोहन गुरुस्वामी,
लाइसेंस और क्रोनिज्म की जो माहौल थी वो जरा खत्म हो गई। कोल लाइसेंसेस, कोल एलोकेशंस, उसको ओपन किया है, 2G नेटवर्क्स को ओपन किया है, टेलीफोन बिडिंग शुरू हो गया, जो पहले जो एलोकेशन होता था वो बंद हो गया। इससे तो, और ये नहीं कह सकते, जैसे अंबानी के बारे में बातचीत होती रहती मगर गैस प्राइस उनको जो चाहते थे वो मिला नहीं। थोड़ी बहुत अडानी के बारे में सुनते रहते हैं मगर कुछ देखते नहीं हम कि क्या कुछ एलोकेट किया है उनको।
ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड भीखू पारिक कहते हैं,
मनमोहन सिंह के जमाने में हर महीने कोई ना कोई स्कैम होती रहती थी, मोदी जी के जमाने में स्कैम कम है, या तो ये भी कहे कि अभी तक हमने ऐसे कुछ स्कैम नहीं देखी, तो उसकी हमारी इकोनॉमी पे बहुत जबरदस्त असर होती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि तरक्की हो रही है आर्थिक क्षेत्र में, बहुत दूर जाना है, बहुत गरीबी है।
जरूरी दस्तावेजों के स्वयं अटेस्ट करने को प्रक्रिया सरलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पासपोर्ट, परिचय पत्र, लाइसेंस, राशन कार्ड के आवेदन के अलावा कई महत्वपूर्ण कामों जैसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए पहले किसी राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर की जरूरत होती थी, यानी उसे अटेस्ट करवाना पड़ता था। अब इसे बंद कर दिया गया है और लोग खुद अपने दस्तावेजों को अटेस्ट कर सकते हैं। इससे जिंदगी बेहद आसान हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 3 सालों में कई योजनाएं शुरू की हैं, जनधन योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत। जहां इन योजनाओं के उद्देश्यों की तारीफ होती है, आरोप है कि मोदी ने पूर्व यूपीए सरकार की योजनाओं को दोबारा पैकेज कर नया नाम दिया। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार मिन्हाज मर्चेंट इसे बेहद बेवकूफी भरी दलील बताते हैं। हर सरकार अपनी पूर्व सरकारों की अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाती है और खराब कार्यक्रमों को बेहतर बनाती है या खत्म कर देती है। यूपीए ने आधार कार्ड कार्यक्रमों को खरीदा नहीं था, इसकी शुरुआत एक टेक्नोक्रेट ने की थी। ये थे मिन्हाज मर्चेंट। उधर लंदन में आर्थिक मामलों के जानकार सुनील पोशाक वाले कहते हैं,
तो आज ये जनधन योजना ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है देश के अंदर। इसके अलावा इन्होंने जो पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस की गरीब लोगों के लिए, और उसके अलावा जो इंश्योरेंस की स्कीम जो इन्होंने लागू की है, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा गरीब लोगों को हुआ है।
बचे दो सालों में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। विश्लेषकों के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए नौकरियां, औद्योगिक उत्पादन ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारी निवेश और सरकार के ध्यान की जरूरत है। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी इंडिया बोल।
नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल का हासिल क्या है? अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में आई थी बीजेपी, क्या वो सपना पूरा कर पाए हैं नरेंद्र मोदी? अपनी राय रखें बीबीसी इंडिया बोल में। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शनिवार 27 मई शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
पंजाब में चरमपंथ का सफाया करने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी केपीएस गिल का दिल्ली में निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। मैंने केपीएस गिल के वरिष्ठ अधिकारी रहे केएस ढिल्लों से अब से कुछ देर पहले बात की और केपीएस गिल के व्यक्तित्व और योगदान के बारे में जानने की कोशिश की।
मेरे मित्र थे बड़े पहले से, मैं उनको वहाँ जानता था जब वो असम में थे। असम में तो मैं एक बार गया था वहाँ पे 1966 में था, तो वहाँ एसपी गुवाहाटी थे उस टाइम पे, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। उसके बाद कभी कभी मुलाकात होती रही, मैं दौरे पे जाता था तब मुलाकात होती थी। उसके बाद फिर जब पंजाब में मेरी पोस्टिंग हुई तो पंजाब में मुझे जरूरत थी अफसरों की, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे कहा था कि आप जिस अफसर को चाहो तो वहाँ मंगवा सकते हो। तो मैंने उसमें कोई 4-5 अफसरों के नाम दिए थे, उसमें ये भी थे, अपने काम में बड़े माहिर थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, अंग्रेजी के बहुत पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी में और लिखते हुए थे और शायर थे, बहुत किस्म की पर्सनालिटी थी उनकी। उसके बाद हॉकी में चले गए, हॉकी में बहुत दिनों तक रहे।
ढिल्लों साहब, आप कोई एक या दो खास बात जिसकी वजह से केपीएस गिल को हमेशा याद रखा जाएगा?
जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी पंजाब में मिलिटेंसी के दौरान और उसके बाद में, वो कुछ कंट्रोवर्शियल भी था, लेकिन ये जो ऐसे बड़े मुश्किल मसले होते हैं, ये नेशनल क्राइसिस के मसले होते हैं, इसी तरह की सिख मिलिटेंसी थी, आजकल कश्मीर का मसला चल रहा है, तो उसमें कई पहलू होते हैं उसके, उनकी बड़ी रोल बड़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ कंट्रोवर्सीज अराइज ही बहुत सारी उन दिनों में, लेकिन फिर भी वो खत्म तो हुई, मिलिटेंसी खत्म हुई। वो सारे मिलिटेंट थे, उनके अपने मॉरल भी बहुत खराब हो गए थे, कम्युनिटी भी उनके खिलाफ हो गई थी, सिख कम्युनिटी, आर्मी का भी एक रोल बड़ा इम्पोर्टेंट था, तो बहुत सारे फैक्टर मिल गए और वो लीडर बने रहे वहाँ पे, सरकार को उनमें भरोसा था, तो हो गई, वो खत्म हो गई मिलिटेंसी। ये एक दुनिया में बल्कि एक पहली मिसाल है जिसमें मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हो गई पंजाब में, उसके बाद वो पनप नहीं पाई।
ये थे पंजाब पुलिस के पूर्व अधिकारी, पूर्व वरिष्ठ अधिकारी केएस ढिल्लों, जो दिवंगत केपीएस गिल के व्यक्तित्व और योगदान के बारे में बता रहे थे। और अब वक्त हो चला है विवेचना का। साल 1959 में भारतीय नौसेना के कमांडर के मानेकशॉ नानावती ने अपनी अंग्रेज पत्नी सिल्विया के प्रेमी प्रेम आहूजा को गोली मार दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन महाराष्ट्र की राज्यपाल ने उनकी पत्नी की दया याचिका स्वीकार करते हुए नानावती की रिहाई का आदेश दिया। इस घटनाक्रम पर बाद में कई फिल्में बनी, कई किताबों में भी इसका जिक्र हुआ। हाल ही में मशहूर पत्रकार बची करकरिया की एक किताब प्रकाशित हुई है जिसका नाम है इन हॉट ब्लड, जिसमें उन्होंने इस बहुचर्चित हत्याकांड की परतों को उभारने की कोशिश की है। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर डाल रहे हैं इस सनसनीखेज हत्याकांड पर।
झूठे मूठे वादे वफाओं के गिना के अपने दीवाने को तू छोड़ गए, छोड़ गए।
ओजी,
ये क्या किया सिल्विया?
नानावती मर्डर केस लोगों की अंतरात्मा में इस कदर घर कर चुका था कि जब पिछले दिनों 50 के दशक की मुंबई पर एक फिल्म बनाई गई बॉम्बे वेलवेट, तो इसमें कवास नानावती की अंग्रेज पत्नी सिल्विया का जिक्र करता हुआ ये गाना भी रखा गया। किस्सा कुछ यूं था कि 27 अप्रैल 1959 को भारत के युद्धपोत आईएनएस मैसूर के सेकेंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कमांडर कवास नानावती कुछ दिन बाहर रहने के बाद जब वापस अपने घर लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी सिल्विया का हाथ अपने हाथों में लेना चाहा, तो उन्होंने उसे झटक दिया। आहत नानावती ने जब सिल्विया से पूछा, क्या अब तुम मुझे प्यार नहीं करती? सिल्विया ने कोई जवाब नहीं दिया। नानावती ने फिर जोर दिया, क्या हमारे बीच कोई दूसरा शख्स आ गया है? इसका जो जवाब सिल्विया ने दिया, उसको न सुनने के लिए नानावती पूरी दुनिया कुर्बान कर सकते थे, लेकिन कवास नानावती ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। वो दोनों अपने कुत्ते को दिखाने डॉक्टर के पास लेकर गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लौटकर उन्होंने शोरबेदार कटलेट्स और प्रॉन करी और चावल का लंच खाया, और पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार नानावती ने सिल्विया और बच्चों को अंग्रेजी फिल्म टॉम थंब का मैटिनी शो दिखाने के लिए मेट्रो सिनेमा पर छोड़ा। उसके बाद नानावती अपने पोत पर गए, वहां से उन्होंने .38 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर निकाली और प्रेम अहूजा के घर पर जाकर उन्हें गोली से उड़ा दिया। उस समय अहूजा नहाने के बाद कमर पर तौलिया बांधे आईने के सामने कंघी कर रहे थे। इन हॉट ब्लड किताब की लेखिका बची करकरिया बताती हैं।
वो चीज खास तो मुझे ये अजीब लगी कि ये एक सिंपल मर्डर केस इतनी ऊंची पैरी तक कैसे पहुंच गया, जहां तक प्राइम मिनिस्टर नेहरू को प्रेस को जवाब देने पड़ा कि क्यों ये बात इतनी बढ़ गई है और क्यों पंडित नेहरू को बीच में पड़ने पड़ा, क्योंकि जब हाई कोर्ट ने नानावती को लाइफ सेंटेंस दिया तो 4 घंटे के बीच में बम्बई स्टेट का गवर्नर ने ऑर्डर दे दिया कि ये सेंटेंस को सस्पेंड करना चाहिए जब तक नानावती की अपील डिस्पोज ना हो, फिर इन्हें की अपील हर्ड ना हो। तो इसलिए बहुत चर्चा बढ़ गई और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बैठने पड़ा। सोचिए, एक अडल्टरी के वजह से एक खून हुआ है, ऐसे नहीं कि कोई बड़ी पॉलिटिकल खून हुई है, उसके वजह से पहले तो हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठाना पड़ा और उसके बीच में डिफेंस मिनिस्टर बीच में पड़ा, प्राइम मिनिस्टर बीच में पड़ा और लंबी इतनी बात हो गई। बहुत अजीब सा केस था, लव, बिट्रेल, ऑनर, हाई क्लास क्राइम, इसलिए उसमें दिलचस्पी अभी तक रही है।
उस समय भारत के चोटी के वकीलों ने दोनों पक्षों की ओर से अपनी दलीलें रखी थी। नानावती ने मशहूर क्रिमिनल वकील काल खंडालवाला की सेवाएं ली। बाद में रजनी पटेल, वाई वी चंद्रचूड़, नानी पालकीवाला, एम सी सीतलवाड और सी के दफ्तरी ने एक न एक पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा लिया। उस जमाने में अपना करियर शुरू कर रहे राम जेठमलानी को तो इसने राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर दिया।
उस टाइम राम जेठमलानी तो जूनियर लॉयर थे और वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं थे, क्योंकि ये क्रिमिनल केस में सेशंस कोर्ट में सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़े होते हैं जज के सामने और डिफेंस लॉयर के सामने। लेकिन प्रेम की जो बहन थी उसने राम जेठमलानी को हायर किया विद अ वॉचिंग ब्रीफ कि देखो कि मेरा बेचारा मरा हुआ भाई का इंटरेस्ट बिल्कुल ना बिगड़ जाए। और राम जेठमलानी उस टाइम भी बहुत होशियार थे, उन्होंने देखा कि ये डिफेंस कह रहा है कि बहुत बड़ा स्कफल हुआ है, उसमें गोली चल गई, लेकिन प्रेम आहूजा तो स्नान करके बाथरूम में से निकला था और उसने सिर्फ अपने कमर पर तौलिया बांधा था। और जब इतनी बड़ी स्कफल हुई और जब प्रेम मर गया और जमीन पर उसकी जो लाश मिली उस पर तो वो तौलिया वैसे के वैसे पड़ा था, तो राम जेठमलानी ने कहा कि जो इतना जो झगड़ा हुआ होगा तो कैसे वो तौलिया उस कमर पर अब तक रह गया। उस बात पे डिफेंस की इतनी बड़ी कहानी बिल्कुल नष्ट हो गई।
प्रेम आहूजा की तरफ से बहस कर रहे सीएम त्रिवेदी ने काल खंडालवाला की उस दलील की काट पेश की कि ये गोलियां दुर्घटनावश चली थी और नानावती का इरादा प्रेम आहूजा को मौत के घाट उतारने का नहीं था। त्रिवेदी बोले,
मेरे प्रतिद्वंदी की बातें ठोस तथ्यों और दलीलों की जगह नहीं ले सकती। मुझे तो शक है कि वो अदालत में बोल रहे हैं या किसी नाटक के मंच पर। मैं जूरी को आगाह करना चाहता हूं कि इस शख्स के दिखावे और बड़े पदकों की कतारों से प्रभावित ना हो, वो इस बात से भी प्रभावित ना हो कि नौसेना के बड़े से बड़े अधिकारी इस शख्स के चरित्र को सही ठहराने के लिए इस अदालत में आकर गवाही दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी नौसेना नागरिक प्रशासन से लड़ाई पर उतर आई है। सच मानिए, ये पूरा मामला एक प्रेम त्रिकोण का है और ये आदम और हव्वा के जमाने से होता आ रहा है।
ललिता रामदास पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास की पत्नी है। जिस समय यह घटना हुई वो कॉलेज में पढ़ रही थी। उस समय के नौसेना अध्यक्ष एडमिरल रामदास कटारी उनके पिता थे। चूंकि नानावती उनके पिता के प्रिय अफसर थे, ललिता उन्हें अंकल कहकर पुकारती थी।
जब मैं पहली बार उनसे मिली थी, वो एक लेफ्टिनेंट थे, तो ये सब हमारे घर में आते थे, खाना खाते थे, गप्पे लगाते थे। उनकी शादी हुई और सिल्विया, जो मैं हमेशा आंटी सिल्विया बुलाती थी, ये दोनों जन जैसे कि एक यंग गर्ल की इमेजिनेशन में ना, एक बिल्कुल यू नो आउटस्टैंडिंग अनफॉरगेटेबल इस प्रकार के कपल थे। और जैसे कि आई थिंक अ लॉट ऑफ हमारे जो टीनेज लड़कियां की अक्सर होती है, वी ऑल यूज टू हीरो वर्शिप हिम। एंड ऑफ कोर्स सिल्विया को हम बिल्कुल ऐसे देखते थे कि माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल वुमन, सच्ची यू नो दे वर अ फैंटास्टिक कपल।
जब भी नानावती अदालत में सुनवाई के लिए जाते, वो नौसेना की सफेद बुर्राक वर्दी पहने होते और उनको मिले तमगे उन पर चमक रहे होते। क्या ऐसा उन्होंने अपने वकीलों की सलाह पर जानबूझकर किया था?
बिल्कुल डिलिबरेट था, क्योंकि यू नो इट वाज लाइक वाव, यू नो एक तो वो थे ही लंबे चौड़े अपराइट 6 फुट टॉल, उसमें ये डैजलिंग यूनिफॉर्म मेडल्स, और वो आते थे भी क्योंकि दूसरी बात है कि कोई भी दिन पुलिस कस्टडी के बाद सीधा उसको नेवल कस्टडी में डाल दिया, जब ये पूरा सिविल क्राइम था, सिविल आदमी के ऊपर हत्या हुई है, सिविल जमीन के ऊपर हत्या हुई है, इसमें नेवी का कोई लेना देना बात नहीं था, तब भी उनको नेवल कस्टडी मिली जब तक ये पूरी चर्चा खत्म नहीं हुई और वो गए आर्थर रोड जेल में 1961 में। और तब डिफेंस लॉयर ने कहा कि देखिए, उन लोग दिखाने चाहते थे कि देखिए ये अपना नानावती तो इतना अपराइट आदमी है, वो देश की ड्यूटी में इतने महीनों तक जहाज पे दरिया में जाते हैं, अपना घर बार छोड़ के उनकी बिचारी बीवी ये ऐसे प्रेम जैसे लोग में की यू नो की बात में फंस जाती हैं। तो उन्होंने बिल्कुल इट बिकेम ऑलमोस्ट लाइक अ नेशनल एक्ट, लाइक प्रेम सेड्यूसिंग नानावती'स वाइफ बिकेम ऑलमोस्ट लाइक सम अनपेट्रियोटिक एंटी नेशनल एक्ट।
इस पूरे मामले में मुंबई से छपने वाला अंग्रेजी टैबलॉयड ब्लिट्स खुलकर नानावती के समर्थन में उतरा। आजकल आमतौर से अपराधी का मीडिया ट्रायल किया जाता है, लेकिन तब ब्लिट्स ने पीड़ित का मीडिया ट्रायल कर एक नई मिसाल कायम की। सबीना गडियोक जामिया मिलिया इस्लामिया के एक एक किदवई मीडिया रिसर्च सेंटर में प्रोफेसर है और उन्होंने इस हत्याकांड के उस समय के मीडिया कवरेज पर एक लेख लिखा है।
द नानावती केस इन अ प्री टेलीविजन ईरा, इट वॉज लाइक अ मीडिया इवेंट, क्योंकि इट वॉज समथिंग जहां पे इट एक्सप्लोडेड, जहां पे ब्लिट्स ने तो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लोड किया, उसको बढ़ाया, उसको वन इवेंट लेड टू अनदर इवेंट लेड टू, क्योंकि ब्लिट्स ने इवेंट्स पैदा किए, लेकिन वो मैगजीन्स में, दूसरी न्यूज़पेपर्स में, बाद में फिल्मों में इसका वर्णन किया गया है कि वहाँ पे नानावती रिवॉल्वर्स लोग बेच रहे थे, आहूजा टॉवल्स बेच रहे थे, लड़कियाँ खड़ी होती थीं जब वो कोर्ट में जाते थे और उनके ऊपर गुलाब के फूल फेंकते थे, क्योंकि ही वॉज अ वेरी डैशिंग एंड हैंडसम मैन, पीपल वर इन लव विद हिम। तो एक तरह का ये पहला इंडिया का मीडिया इवेंट था। इट अक्वायर्ड अ नेशनल इम्पॉर्टेंस, एक स्कैंडल acquired a national importance. Now, as far as I am concerned as an academic, एक scandal एक बहुत interesting चीज़ है, क्योंकि scandal जो है आपको उस ज़माने की एक historical moment की मॉरल ट्रांसग्रेशंस या मॉरल आप कह सकते हैं सीमाओं को वर्णन करने में बहुत यूजफुल चीज़ है. ऑन द फेस ऑफ इट इट कैन सीम कि स्कैंडल एक बहुत ट्रिवियल चीज़ है, लेकिन ये जो स्कैंडल था कुछ और तरीके का स्कैंडल था. इस स्कैंडल ने एक नेशनल लेवल का अटेंशन ग्रैब कर लिया था और आप इसकी तुलना कर सकते हैं. एट दिस टाइम पॉलिटिकल इवेंट्स भी हो रहे थे, ये एक बहुत अनइवेंटफुल टाइम नहीं था. पाकिस्तान के साथ वॉर की वो बातें शुरू हो रही थी 1962, चाइना के साथ एक स्ट्रेन रिलेशनशिप था, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स थी, स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हो रही थी, कम्युनिस्ट हैड बीन यू नो इलेक्टेड इन केरला. Given all that, it acquired a certain kind of national attention, of course brought on by Blitz.
ये पहला मौका था जब नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कटारी खुद अपने कैनबरा विमान से उड़कर नानावती के पक्ष में गवाही देने मुंबई पहुंचे थे. पूरी नौसेना और यहां तक कि रक्षा मंत्री वी के कृष्ण मेनन भी खुलकर नानावती के समर्थन में आ गए थे.
देखिए ये बात है कि डिफेंस मिनिस्टर को नानावती को बहुत 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 सपोर्ट किया है. नानावती वॉज हिज डिफेंस अटैचे इन लंदन, तो उस टाइम में शायद यू नो कृष्णा मेनन के ऊपर उसकी बहुत असर हुई. उन्होंने सोचा होगा कि हाँ ये बहुत यू नो बहुत प्रॉमिसिंग आदमी है. और नेहरू ने प्रेस को कहा कि नहीं, नानावती के कोई फैमिली ने हम मुझे नहीं कहा कि हाँ कि गवर्नर को उसको यू नो वो सस्पेंड किया जाइए उसका सेंटेंस, लेकिन नेवी चीफ ने हमें कहा था कि हमारा इतना प्रॉमिसिंग कमांडर है तो प्लीज उसको जरा हम लोग किड ग्लव से यूज करें. बट डिफेंस मिनिस्टर ने न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट को कहा कि नहीं, मेरे इंटरवेंशन पर ये सब बात हुई है क्योंकि दैट द स्टेन ऑफ टर्पिट्यूड शुड नॉट स्टेन द करियर ऑफ सच अ प्रॉमिसिंग यंग ऑफिसर. तो बहुत बहुत ये कृष्णा मेनन ने बहुत बहुत प्रेशर लाया है.
लेकिन तमाम जन समर्थन के बावजूद कवास नानावती सारी कानूनी लड़ाइयां हार गए और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. लेकिन नानावती को अधिक समय तक जेल में नहीं रहना पड़ा. महाराष्ट्र की तत्कालीन राज्यपाल विजयलक्ष्मी पंडित ने उनकी सजा समाप्त करते हुए उन्हें क्षमादान दे दिया. 17 मार्च 1964 को नानावती को लोनावला के एक बंगले सनडाउन से रिहा कर दिया गया. यहां वो एक एक महीने के पैरोल पर पिछले 6 महीनों से रह रहे थे. नानावती ने 3 साल से भी कम समय जेल में बिताया. जेल से छूटते ही नानावती अपनी पत्नी सिल्विया के साथ कनाडा जाकर बस गए. वहीं 2003 में उनका देहांत हो गया. उनकी पत्नी सिल्विया अभी भी जीवित है लेकिन इस मुद्दे पर किसी से बात करना नहीं चाहती. रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली.
और इसके साथ ही वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर वात्सल राय से.
बीबीसी समाचार. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे कर लिए. केंद्र सरकार के मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस मौके पर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया. वहीं कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने सरकार की नाकामियां गिनाई. मिस्र के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक कॉप्टिक ईसाइयों को लेकर जा रही एक बस पर हुए हमले में 26 लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं. ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कोर्बिन ने कहा है कि चरमपंथ का खतरा कम करने के लिए ब्रिटेन की विदेश नीति कम हस्तक्षेप करने वाली होनी चाहिए. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चरमपंथ के खिलाफ संघर्ष में ब्रिटेन को समर्थन देने का प्रस्ताव दिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय वायुसेना के मंगलवार को लापता हुए Sukhoi-30 लड़ाकू विमान का मलबा तेजपुर से 60 किलोमीटर दूर मिला है. पंजाब पुलिस के पूर्व महानिदेशक KPS गिल का निधन हो गया है. वो 42 साल के थे. पंजाब में चरमपंथ खत्म करने में गिल की भूमिका को बड़ा श्रेय दिया जाता है. सीरिया में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन के हवाई हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई है. रिपोर्टों के मुताबिक मरने वालों में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के रिश्तेदार हैं. अमेरिकी गठबंधन ने अभी इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी है. बीबीसी समाचार.
तो इसी के साथ दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है. भारत में बस बजने वाले हैं 8:00. आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह
6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो का संचालन किया राजेश चौहान ने। तो अब संदीप सोनी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की पल पल बदलती खबरों के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।